हर राधा माधव कुंज बिहारी
Thank you.
His divine Srila Paicharana Arvinda Bhakti Vedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ki ISKCON Deputy Founder Acharya Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jaya Jayam Visupada Paramahamsa Parivrajakacharya Stuttara Sutta Shishima This divine Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Jaya Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jaya Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jaya Prems Kahasa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakti Vrinda Ki Jaya Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jaya Rajavi Vrindavan Dham Ki Jaya Navadit Mahavar Dham Ki Jaya Jagannath Puri Dham Ki Jaya Ganga Mai Ki Jaya Jamuna Mai Ki Jaya Bhakti Devi Ki Jaya Tulsi Maharani Ki Jaya Samavita Bhakta Vrinda Ki Jaya Gaura Premana Ki Jaya All glory to Sri Das नास्यासुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्यास्ते निर्वास्यतामाशु पराशु साशं एनं मत्रोपजुहावजिह्याम् दास्यासुतं यद्बलिनैव पृष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पराशु स्वशताम् त्रोपजुहावजीहां दास्यासुतं यद्बलिनेव पुष्ट तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराक्षसस्वसाम् उसको प्रतीपः शत्रुता परकृत्य शत्रु का ही हित करने वाला आस्ते स्थित है निर्वस्य ताम बाहर निकालो आस्तु तुरंत पुरात महल से स्वसान उसकी केवल सांस चलने अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा इस रखेल के पुत्र को यहां आने के लिए किसने कहा यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है इसे तुरंत महल से निकाल बाहर करो और केवल उसकी सांस भर चलने दो। ओम ज्ञान निरंधस्य संस्कृत में कोई कठोरता वाला बोले तो कैसे बोला जाता है? कइनम अत्रोपजुहाव जिह्वा दास्यासुतम यद् बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वासितात्मासु पुरान् श्वशसाम। ये क्रोध दुर्योधन का है? लेकिन भागवत है, भागवत में प्रेम रस होता है और दूसरा रस नहीं होता। तात्पर्य बड़ा है, हम चश्मे लाना भूल गए इसलिए पढ़ नहीं पा, फिर भी थोड़ी कोशिश करते हैं। ये काफी पॉलिटिक्स होती है, देखो कैसे चलती है। सुखदेव गोस्वामी को ये पॉलिटिक्स को पहले बाहर निकालना चाहिए, इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ये कैसे होता है। वो कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विवाह करते समय क्षत्रिय राजा अन्य कई युवतियों को विवाहित राजकुमारी के साथ ले आते थे। राजा को ये युवती परिचारिकाएं दासी कहलाती थी। ये दासियां राजा के सहवास में पुत्र उत्पन्न करती थी। ऐसे पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता, किंतु उन्हें भरण पोषण तथा अन्य सुविधाएं राजकुमारों की ही समान प्राप्त रहती थी, क्योंकि राजा के बेटे थे। विदुर ऐसी ही दासी के पुत्र थे, अतएव उनकी गणना क्षत्रियों में से नहीं की जाती थी। राजा धृतराष्ट्र अपने ऐसे छोटे दासी पुत्र भाई से अत्यधिक स्नेह करता था और विदुर उसके महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार थे। दुर्योधन यह भली भांति जानता था कि विदुर महात्मा तथा हितैषी है, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया अपितु उसके कृतज्ञ कहा, क्योंकि यह युधिष्ठिर का समर्थक प्रति होता था जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उसने चाहा कि विदुर को तुरंत महल से निकाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यह संभव होता तो वह उसके तब तक बेत लगवाता जब तक उसके पास सांस के अतिरिक्त कुछ बाकी नहीं रहता। उसने आरोप लगाया कि यह पांडवों का गुप्तचर, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र को उनके पक्ष में सलाह दी थी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति पर भी गर्हित आरोप लगाया जाता है और दंडित किया जाता है। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित थे और इसके पूर्व कि सचमुच कोई घटना घट जाए उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया। तो ये वृत्तांत प्रभुपाद जी इसलिए देते हैं कि जहां सत्ता लाभ और इंद्रिय तृप्ति का विषय होता है, कभी कभी प्रतिष्ठा का भी प्रश्न होता है, तब ये पॉलिटिक्स यानी कि मुत्सद्दीगी बन पाती है, सब जगा दे। लेकिन विदुर का व्यवहार कैसा ये देखना। जो आत्मा का धर्म समझ रहा है उसके लिए ऐसा व्यवहार उचित है, ऐसा नहीं कि ये अपमान सहन नहीं कर पाता है। विदुर जैसे महात्मा कठोर वचन से उनका कुछ होता है, वो घबराते हैं, लेकिन उनका व्यवहार उचित होना चाहिए कि वहां से निकल जाए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी बाजी खेली जाती है। हम तो उसका कारण देखना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ। तो यहां स्पष्ट बताया, प्रभुपाद जी स्पष्टता करते हैं, ईर्ष्या। ऐसे कठोर वचन जानते हुए भी क्यों निकलते हैं, क्योंकि ये निर्दोष है। धर्म का जो पक्ष लेता है तो हमेशा निर्दोष होता है, वो दोषित नहीं है, लेकिन उनको दंडित क्यों किया जाता है और दंडित होते हुए वो सहन क्यों करता है। महात्मा की गरिमा यहां समझी जाती है, गरिमा यानी कि उसकी सर्वश्रेष्ठता। महात्मा जो होता है तो किसके आश्रित होता है? महात्मानस तो मां पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित है, भजन की अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मर्दे। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति दैवी प्रकृति को आश्रित होता है, भौतिक प्रकृति पर आश्रित नहीं। जिनको लाभ चाहिए, सत्ता चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मैं भी कुछ हूं, हम भी कम नहीं है, ऐसे भाव वाले भौतिक प्रकृति पर आश्रित होते हैं, भगवान पर नहीं। हाँ, वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान आशीर्वाद दे तो हम अपनी इच्छा पूर्ण करेंगे, आपकी सेवा हमारी इच्छा। ये भक्ति की उत्तम स्थिति नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्य ध्यान करना तनातम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। विदुर जी क्यों चले गए? वैसे तो प्रभुपाद जी ने लिखा कि एक बार निश्चय कर दिया कि वो महल छोड़ के वापस कभी नहीं आएंगे, लेकिन दुर्योधन मर जाने के बाद आते हैं, तो क्या वो कृत निश्चय नहीं है? तो ये कैसे समझा? विदुर जैसे महात्मा भगवान की दैवी प्रकृति पर आश्रित हैं, भौतिक प्रकृति पर नहीं, इसलिए इनका महल छोड़ना और महल में वापस आना सिर्फ आध्यात्मिक कार्य के लिए ही होगा, भगवान की सेवा के लिए ही होगा, अन्य कोई नहीं। भगवान के भक्तों की सेवा के लिए उनका जीवन था, वो भक्तों की सेवा करना दैवी प्रकृति की आशा, चाहे हमें अनुकूल भी ना हो, हमें प्रतिकूल, लेकिन भगवान की इच्छा है तभी तो हो रहा है। इसीलिए जब महात्मा होते हैं तो होने दो, हमें कुछ नहीं, हमें इन झंझटों में पड़ना नहीं, चाहे इसमें मान मिले अपमान मिले, दोनों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो विदुर जी विचलित नहीं होते, तुरंत वैसे ही विदुरानी को भी छोड़ के चले गए, अकेले चले गए, वो इनकी संपत्ति नहीं थी। ऐसे महात्मा पहने कपड़े ही चले गए, पहने हुए कपड़े ही चले गए। महात्मा के जो लक्षण होते हैं, तो हाँ, कौन दैवी प्रकृति पर आश्रित है, कौन भौतिक प्रकृति पर आश्रित है? महात्मा होने वाला यदि भौतिक प्रकृति पर आश्रित होने का ही देता, तो वो सत्ता के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, और मैं भी कुछ हूं करके बताऊंगा, ऐसी सारी भावनाएं जो भौतिक होती हैं, इन पर आश्रित रहता है, तो वो महात्मा नहीं कहलाता। महात्मा नहीं कहता, चाहे अध्यात्म में कितना प्रवीण क्यों ना हो, वो महात्मा नहीं कहलाता है यदि भगवान का ही द्वेषी हो। जो भगवान का द्वेषी है वो भक्तों का भी द्वेषी होगा। मूल द्वेष जीवात्मा ने भगवान के साथ किया है, इसलिए एक भौतिक अवस्था भौतिक प्रकृति पर आश्रित होने की जबरदस्ती पड़ रही है, थोपा जाता है, चलो भौतिक प्रकृति पर आश्रित। लेकिन भक्त होना यानी कि भौतिक प्रकृति पर ज्यादा आश्रित नहीं, जहां तक शरीर और आत्मा टिके वहां तक, बाकी का सब आध्यात्मिक प्रकृति पर आश्रित है, यह भक्त की स्थिति होती है। क्योंकि न तो भक्त भगवान के बराबर होता है, न उसे ऊपरी होता है, वो हमेशा विनम्रता धारण करके अपने को दास दास अनुदास उसकी परिस्थिति में रहता है। ये मूल जो ईर्ष्या का कारण भक्त के सामने हमेशा खड़ा होता है कि ये ईर्ष्या थी इसलिए मैंने शरीर प्राप्त किया, भगवान ने मुझे भौतिक प्रकृति में इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे अंति परन्तप, बिना अपवाद सारे जीव भगवान से ईर्ष्या जो अलग इच्छा के साथ साथ पैदा होगी इसके द्वारा ये द्वंद यानी कि भौतिक प्रकृति को द्वंद कहते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति में द्वंद नहीं तो महात्मा की पहचान ये द्वंद से मुक्त है। विदुर जी द्वंद से मुक्त थे, एक दूसरे के से विरोधी प्रकृति वाली जो अवस्था है उसे द्वंद कहते हैं। इसीलिए मान हानि पूजा लाभ इत्यादि ये सब भौतिक गणना होती है, उससे मुक्त हो। वैसे जबरदस्ती से आप देखोगे कि यदि कोई नहीं चाहता हो वो भी पीछे पीछे आएगी, परिणाम के रूप में आएगी। कोई भक्ति का कार्य है तो उसे भी बहुत सराहने करने वाले भी होंगे, इनके चेले चमचे भी होंगे, लेकिन इनका अध्यात्म का जो हित होता है मूल भगवान के साथ उसके लिए कोई मदद नहीं करता। हर एक शिष्य की तो यही भावना होनी चाहिए कि अपने गुरु के आध्यात्मिक परिस्थिति को टिकाने के लिए हमें उनको बल देना चाहिए, इसलिए साधना करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि गुरु की स्थिति कोई भौतिक थोड़ी है, आध्यात्मिक होती। हर एक भक्त की जीवन की सिद्धि अपने गुरु और कृष्ण भगवान के बीच का कैसा संबंध है उस पर आधारित है, उस पर आधारित है। तो भक्ति की सफलता वहां होती है, सत्ता हासिल करने से नहीं होती। विदुर जी उपयुक्त सलाह देते थे, लेकिन ये राजद्वारी जो संचालन था उसमें कभी दखल नहीं करते, जानते हुए सब सहन करते थे, लेकिन पांडवों के हित में काम करते थे क्योंकि भक्त थे। इसलिए भक्तों की मदद करना वो कोई पक्षपात नहीं। जब यहां दुर्योधन दावा कर रहा है कि ये देखो हमारा ही घर का खाकर वो अपना खोदता है, हमारा ही खोदता, ये तो पांडवों की चपरासी कर रहा है, निकालो ये जासूस, ये जासूस बैठा जासूसी कर रहा। जो पॉलिटिशियन होता है राजद्वारी पुरुष मुत्सद्दी, बड़ा बड़ा मुत्सद्दी का बहुत अभिमान भी होता है, प्रदेश में भी बहुत हो गए, उनका जो अभिप्राय होता है वैसे ही काम चलता है राज्य द्वारा। किसी ने किसी भक्त पर काला टीका लगा दिया चाहे दोषित हो या निर्दोष हो, बस उसके आधार पर सारा समाज में काम चलता है, ये तो दोषित है, ये तो दोषित है, ये तो कलंकित है, ये वो। अरे भाई क्या कलंक लगाया, क्या सफाई हुई, कुछ देखता नहीं, जानता है कि ये सीधा बोलता है, यदि उसको उत्तेजन दे तो हमारा कोई हिसाब नहीं रहेगा। इसलिए उल्टा सुल्टा बोलता है, अनप सनप बात करता है, तो ये सब भौतिकवादी और भक्तों के लक्षण तुरंत स्पष्ट हो जाते हैं। जहां पॉलिटिक्स समझो, गया काम से कृष्ण भावना का अभाव होता है। कृष्ण भावना का अभाव पॉलिटिक्स को पैदा करती है। इसलिए हाँ, ये चरित्र विदुर जी का हमें देखना चाहिए। आप देखोगे कि चैतन्य महाप्रभु ने जो जो शिक्षा दी है तो भक्त के चरित्र खिलाने के लिए, उठाने के लिए, इन शिक्षाओं के विरुद्ध हरेक जीव जो कोई काम करता है तो समझो ये अपनी करने आया। वो अपनी करता है, अपने मतलब की बात करता है। तो यदि इसके ऊपरी अधिकारी भी मतलबी हो तो मतलबी की गुटबंदी होती है, लेकिन भक्ति में मतलब का कोई सवाल नहीं। मतलब जानते हो हमारा क्या है, इसमें हमें क्या मिलेगा, इसको मतलब कहते हैं। मेरा क्या हिस्सा, मेरा कमीशन की ये मेरे पक्ष में है कि नहीं, ये सब बता। तो जहां कृष्ण भावना का अभाव है वहां ये पॉलिटिक्स चलती, ये माया कहलाती है। वो कोई भक्ति में तंदुरुस्ती लाने वाली कोई बात नहीं, बीमारी फैलाने की बात है। और ये बिना बीमारी कैंसर जैसी फैलती है, इसका कोई इलाज नहीं। एक ही इलाज है, हरे कृष्णा विदुर जी स्वयं धर्मराज के अवतार थे। यूं देखो तो यमराज धर्मराज कहलाते हैं। तो यमराज को मांडव्य मुनि के शाप द्वारा इनको दासी पुत्र बनना पड़ा। तो लेकिन आप देखो कि ये युधिष्ठिर के रूप में भी अपना विस्तार करके आए, और युधिष्ठिर की परीक्षा करने के लिए यक्ष के रूप में भी यमराज, एक यमराज तीन तीन स्वरूप में एक साथ साथ। क्योंकि धर्म धर्म भगवान से अलग नहीं होता, भगवान अपना विस्तार अपनी आध्यात्मिक प्रतिभा द्वारा। भगवान को अपनी भौतिक स्थिति कोई होती ही, उनका संपूर्ण जो संकलन होता है वह आध्यात्मिक होता है। तो विदुर जी धर्मराज थे, युधिष्ठिर के पक्ष में थे, और इनके पक्ष में होकर ही भगवान की सेवा हो पाएगी उसमें कृतनिश्चय थे। दुर्योधन जानता भी था, सारे राजमहल में अलग अलग प्रकार की व्यक्तियां, उसके ही महल में जो एक ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो तो विदुर वो भक्ति में पूर्ण। वैसे तो भीष्म पितामह भी थे, भक्त थे, विशुद्ध भक्त, लेकिन वो तो सिर्फ अपने भगवान का कि प्रतिज्ञा तोड़ने की ही राह देखते थे, इसलिए सब कुछ करने के लिए दिया। इनका रस अलग था। उन्होंने भी वैसे सहनशीलता बताई है, लेकिन वो सराहनीय नहीं बताई। जैसे कि द्रौपदी के चीरहरण हुए तब भी भीष्म पितामह ने कुछ नहीं कहा। वहां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इन लोगों का यह दोष था कि कुछ नहीं कर पाए, इसलिए उनकी भी मृत्यु निश्चित बनाई गई। भगवान चाहे अपनी इच्छा के अनुसार उनके मृत्यु का वरदान उसके था, शांतनु उनके पिता ने दिया था, फिर भी भगवान ने वो इच्छा पूर्ण करने के लिए उनको मारने का ही निश्चय किया था और अर्जुन के द्वारा ही मरवाया। भगवान की इच्छा के अनुसार कौन करता है, उसमें भक्ति की महानता होता है। इसलिए अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, उत्तम भक्ति भगवान की अनुकूलता वाली ही होनी चाहिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं। इसमें क्या क्या सहन नहीं करना आता है, सब कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी विनम्रता धारण करने के लिए उन्होंने स्वयं उदाहरण दिया, ईश्वरपुरी से दीक्षा। जबकि अद्वैताचार्य नित्यानंद महाप्रभु ये सब ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी, विशुद्ध भक्त है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से ही दीक्षा, क्योंकि ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु दोनों विनम्रता की मूर्ति थे, विनम्रता। नित्यानंद अवधूत के पास विनम्रता होने की कोई आवश्यकता का प्रश्न नहीं है। हाँ, वो तो मोजीले होते हैं, अपने अपने मन के अनुसार ही करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा। अद्वैताचार्य वैसे सबसे वयोवृद्ध थे, उम्र में सबसे बड़े थे। महाविष्णु के अवतार सामान्य व्यक्तित्व तो है ही, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु की सराहना करने के लिए उपस्थित थे कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा पद्धति है विनम्रता वही अपनाने। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी के पास दीक्षा की याचना की तो कहते नहीं नहीं माई पंडित, आप तो पंडित, दुनिया क्या कहेगी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनका हृदय जानते कि जो भगवान के नाम की सराहना के लिए ईश्वरपुरी बहुत उपयुक्त है, क्योंकि सहनशीलता विनम्रता इत्यादि से ही भक्ति हो सकती है। ये नहीं है तो ईर्ष्या बनी रहती है, ईर्ष्या बनी रहती है, द्वेष। भगवान के साथ का द्वेष मिटाने में हम असमर्थ रहेंगे। ये संस्था चलानी है तो पॉलिटिक्स करनी ही पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, दुनियादारी सारी हम यहां अंदर घुसाते हैं, लेकिन भक्ति निकालते हैं। भक्ति की कोई नहीं, वो तो अपना अपना करते ही रहो, सोला माला करो, चांदियों का जप करो, बस। और भजन गारंटी दी है, अरे भैया विकास की गारंटी तो ईर्ष्या दूर करने से होती है, वो भी दी है, उसका क्या है। तो ये सारी बातें आत्में स्पष्ट होनी चाहिए हमारे सामने। ये उदाहरण रखना चाहिए, वो कभी ना भी तब भक्ति हो सकती है। भक्ति चैतन्य महाप्रभु की जो फॉर्मूला है उसके अनुसार ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। यदि जो गोलोक धाम में जाना, भगवान को जानना, देखना और उनके साथ व्यवहार करना, ये नित्य मुक्त जीव का एकमात्र व्यवसाय है, और वो केवल अन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त होता है। अन्यता में खुद की भौतिकता की अन्यता नहीं। हम चलो ये शरीर को कष्ट देकर हम भक्ति करते हैं, सुबह उठना, ठंडे पानी से स्नान करना है, जहां तक हो सकता है कर लेते हैं, लेकिन मन बुद्धि अहंकार को क्या कष्ट देना पड़ता है? वो देते हैं कि नहीं? वो सूक्ष्म से भी पड़ा है, अपने मन में बहुत सारी इच्छाएं पड़ी हैं, और मन तो कोई जानता नहीं, इसे भी हम छुपा छुपा कर काम करते हैं, वो ठीक है, और कौन देखने आया? लेकिन मन को भी कष्ट देना पड़ता है, जबरदस्ती मन पर करनी पड़ती है, नहीं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जूते मारने की क्यों बात करते हैं? दिन उठे जूते मारो मन को, और रात के सोते समय लगाओ, रे मन तू किसे रे वैष्णव, तो एक मन को शिक्षा देना, यानी कि मन पर बहुत कठोरता था, मन को जीतने के लिए कठोरता ही काम में आएगी, मन को सराहना करने से वो अपना दुश्मन ही बना रहेगा। जिसने अपने मन को जीता नहीं है उसका मन शत्रु ही है, वो मित्र नहीं बना। मन को जीतो तो मित्र बन सकता है, नहीं तो नहीं। तो विदुर जी का ये चरित्र बहुत उत्तम चरित्र है। दासी पुत्र होना कितनी नीचता की बात है, यानी कि यहां रखेल की बात करते हैं, रखा रखेल, यानी कि अधिकृतता से किसी ने शादी नहीं की है, और किसी और औरत को घर में रखते हैं तो रखेल कहलाते हैं। उनके साथ बच्चे पैदा करना, यानी कि वो दासी पुत्र होना शूद्रता, दासी शूद्र हो, परिचर्यात्मकम शुद्र कर्म स्वभाव जब, तो इतना नीचा स्थान समाज में तो कलंक कहलाता है, वो विदुर जी ने स्वीकार, वो विदुर जी ने स्वीकार। चलो राजमहल में रहे, लेकिन जब ऐसे जबरदस्ती दुर्योधन करता है कि तेरा सारा धन भी छीन लो और ये सब सिर्फ श्वास बचाने के लिए इनको जिंदा रखो, घर में ये महल के बाहर निकालो, खाना पीना बंद, सिर्फ श्वास लेने की ही इजाजत, यानी कि अपने आप मर जाएगी, निकलो यहां से। वहां तक कि जिसका हितेच्छु है वो ऐसे अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र जिनका सलाहकार है, इनके अध्यात्म के हित में वो सारी सलाह दे रहा है, और धृतराष्ट्र को पसंद भी है, लेकिन शकुनी और दुर्योधन की उपस्थिति में धृतराष्ट्र भी अंधे के अंधे ही रहते हैं, अपने भाई के लिए भी कोई सराहना नहीं। विदुर पर प्रेम है फिर भी देखो ये प्रेम में पॉलिटिक्स, भौतिक प्रेम में पॉलिटिक्स होती है, भगवान के साथ के प्रेम में पॉलिटिक्स नहीं, चलाई नहीं जाती। तो इतना सारा सहनशीलता का स्वभाव विदुर जी का, दुर्योधन का क्रोध जो ईर्ष्या से पैदा होता है, ईर्ष्या होते ही आदमी अंधा होता है। वैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सांप अपने जैसा सीधा स्पष्ट देख नहीं सकता, उसकी आंखें सिर्फ जो इंफ्रारेड लाल किरणें होती हैं ना, क्रोध वाली लाल किरण, उसके समान को थोड़ा सा धुंधला चित्र दिखता है। सांप की आंख में हमेशा ईर्ष्या होती है कि अनायास बिना कारण किसी निर्दोष को भी दसने में वो झिझकता है। तो क्रोध और ईर्ष्या जो है वो जहरीली के, वो जहर जिंदगी खत्म करता है। ये जब जहर निकल जाए तो जीवन अमृत बन जाता है। आत्मा ईर्ष्या से जहरी होना, वो जहर फैलाता फैलाता भौतिक दुनिया में भी फैला ही रहा। कोई प्रेम से झगड़ते देखा है? प्रेम से कोई झगड़ता है? यदि झगड़ता है तो वो झगड़ा टिकता नहीं, थोड़ी देर होता है। लेकिन ईर्ष्या से झगड़े तो युगो युगो तो चलता रहेगा। कोई उदाहरण है? ईर्ष्या से झगड़ा युगो युगो तक तो चलता रहेगा। देवता और दानवों में झगड़ा होता ही है, युगो युगो से चलता है। यदि आपस में यदि कोई झगड़ा करते हैं थोड़ी देर टिकता है, फिर से गुरु एक होने के कारण हमें जबरदस्ती से झगड़ा मिटाने की आवश्यकता रहती है। इसी तरह जबरदस्ती से झगड़ा मिटाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। एक ज्ञान द्वारा भी झगड़ा मिट सकता है, किसी की मध्यस्थी द्वारा भी झगड़ा मिट सकता है, और न्याय द्वारा भी मिट सकता है, मिटाओ। लेकिन पहला झगड़ा भगवान के साथ का है, वो मिटाते सारे झगड़े मिट जाते हैं। भगवान के साथ का झगड़ा करके हम आए हैं तो पहले भगवान के साथ ही झगड़ा मिटा दो तो सारे झगड़े मिट जाए। तो वो विदुर जी का उदाहरण। तो ईर्ष्या से अंधा होता है, अंधे आदमी का मन भी अंधा होता है, वो कहना कुछ चाहता है निकल कुछ जाता है। इतनी ईर्ष्या उसे अंदर से अग्नि तरफ जलाती है, ईर्ष्या से जलता है। ईर्ष्या से कोई शांत हुआ नहीं, जलता ही जलता है। इच्छाओं को भी चिंता कहते हैं, चिंता करना यानी इच्छा है। और चिंता चिता के समान है, चिता यानी जल। आदमी मर जाता है तो उसे चिता पर चढ़ाते हैं, तो ये जलने का स्वभाव। दुर्योधन अंदर से जलता है, उसका मन जलता है, उसका और उसकी जबान भी जलन कराने वाली ही होती है। ये मूल स्वभाव है। तो जब भगवान के साथ झगड़ा मिटाने के लिए प्रेम से हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं तो उसकी शीतलता श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, वो शीतलता का वितरण सारे अपने ही अंदर हो और हमें नवजीवन यानी कि विद्यामधु जीवन आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृताम स्वादनम सर्वात्म स्मरणम परम विजय श्री कृष्ण। हाँ, ये झगड़ा मिटाने की दवा है परम विजय के, यानी कि उसका सचोट उपाय जो हमेशा सफल होती है उसकी विजय होती है, ये संकेत संजय तो उसे हमें खुद लाभ होना चाहिए और यही अपनी मूल स्थिति पर लाने के लिए एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? किस कारण से मांडव्य मुनि के श्राप यमराज को श्राप मिला था? ऐसा था कि ये मुनि बचपन में कोई कीड़े को कांटों से उन्होंने भेद दिया, तो जब वो मुनि हुए हैं, मुनि जब उनकी भी इनका देह जब खत्म हुआ तो यमराज के दरबार में गए तो यमराज ने कहा कि तूने ऐसा किया था, तुझे भी सुली से अंदर उतार है। तो आर्ग्यूमेंट किया मांडवी मुनि ने, मैंने तो अनजाने में ये किया है, तुम जानबूझकर धर्मराज हो फिर भी क्यों मुझे ऐसा करते? यानी कि आपने मुझे जो ये सुली पर चढ़ाने का, सुली पता नहीं सुली क्या होती है, हाँ तो सुली पर चढ़ाना यानी कि ऐसा ही उसका उसको सजा मिली, लेकिन ये सजा प्रमाण में न्याय की दृष्टि से बहुत ज्यादा थी। एक मनुष्य को सुली चढ़ाना, एक छोटे कीड़े को सुली पर चढ़ाना, यमराज की नजर में दोनों बराबर कैसे? और वो तो मुनि थे, यानी कि भगवान का ही तो चिंतन करते हैं। तो उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिए। यमराज जानते हैं कि विभक्त है, लेकिन तेरे श्राप को मैं करता नहीं, मैं स्वीकार हूं क्योंकि भगवान को आवश्यकता है, भगवान के काम में मुझे निमित्त बनकर विदुर के रूप में आना है। तो वो तो भक्तों की अंतरंग बात है, इसलिए हमेशा चरित्र, कभी कभी देह की पीड़ा सहन न कर पाते भी क्रोध होता है कि जानबूझकर मुझे ऐसा क्यों। हम भौतिक अवस्था में न्याय मांगते रहते हैं और मैंने ऐसा नहीं किया था ऐसा नहीं, तो जैसा किया है उसकी तुलना करते हैं, लेकिन जो भक्त होता है सारी तुलना छोड़ देता है, क्योंकि भौतिक अवस्था तुलना वाली है ही, क्योंकि एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाली है तो तुलना कैसे कर सकते, ऊंचा और नीचा की तुलना कर सकते हैं, ठंडे और गर्म की तुलना कर सकते हैं, बीच में आप फंसे हो, हम जीव फंसता है बीच में, इसलिए दोनों से हमें परे रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए। तो मान और अपमान को भी सहन करने की जो स्थिति है तो वो संतुलता आती है। ये नहीं मुझे मान हानि की, चलो मैं कोर्ट में ले जाऊं उस पर ये दावा करूं, एक चलो छोटे कीट का खून किया तो यमराज मुझे क्यों ऐसे दूसरे के पास खून की सजा, ऐसा श्राप मांडव्य मुनि ने यमराज को दिया। मुनि थे तो चलो ठीक है, भक्त है ना, लेकिन ये महान भक्त महाजन भगवान की सेवा में वो श्राप को विदुर देना चाहते, इसलिए विदुर के रूप में। ठीक है, हरे कृष्ण। Yeah.